ततारा वामीरो कथा, लेखक है लीलाधर मंडलोई। अंडमान द्वीप समूह की अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सूर्योदय पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गाँव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता। उसके इस त्याग और वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में और उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गाँवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से स्मरण करते और आमंत्रित किया जाता है। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से वे लोग के करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। उसका दूसरों से सामना उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामे के कारण लोग भाग तलवार से अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगा क्षितिज तले ढूंढने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनै शनै क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री भालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजती सुनाई दिया। गीत मानो बहुत अच्छा था कि उसके तरफ वो हो रहा था। बीच बीच में लहरों की गीत सुनाई देती। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपने सूझबूझ खोने लगा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने की विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत की स्वरें बह रही थी। वे विहल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य से भीसुद एकटक समुद्र की देह पर डूबती आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसके अपने कानों में गूंजते गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मृत हो गई। इसके भीतर उसे कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर करे उसे बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा गाओ। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो, लपाते गांव में तुम्हें कभी देखा है नहीं? ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढिठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप कर रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? ये तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारों का मानो कुछ होश आया, उसने अपने गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं ऐसे विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, तंतारा ने व्यवस्था में आग्रह किया और उसके आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वा मी रो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वा मी रो, वह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ, ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, आमिरों ने अन्यस्मरणपूर्वक कहा और झटके से लपाते की तरफ बेसुधी से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा की आवाज गूंज रही थी, आमिरों, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जो होगा ज़रूर आना। वामिरो रुकी ही नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक जलाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरे चेहरा उसके आँखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वह ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसे वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गाँव के युवक के साथ यह संबंध परम्परा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसके आँखों के सामने था, निर्निमेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। इसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह अनचरहित एक ठंडा और उबाव दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन में अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाते की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो न आए तो। वह कुछ निर्णय भी नहीं पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षित था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र में देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाते की रास्तों पर नज़र डालता। सहसा नारियल में झुलमुटे में एक सी आकृति कुछ साफ आई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, सचमुच वो वामिरो थी। लगा जैसे घबराहट में थी, वह अपने को छुपाती हुई बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों बेशब्द थे, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे दोनों कब तक खड़े रहे ये कोई नहीं जानता। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरों को कुछ चचेत हुए और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अभी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्खतापूर्वक एक दूसरे को निर्निमेश ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इसे मुख प्रेम की भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था, रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने में कई प्रयास किए, परंतु दोनों अडिंग रहे। वे नियमतः लपाती की उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के युवकों की शक्ति परीक्षण प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततरा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसके व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड की एक पेड़ के पास उसे कुछ जैसे झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विफल उठा। उससे कुछ बोलते ही वह नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मूढ़ था। वामिरो ने रुदन स्वरों में सुनकर अपने माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बुबला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपने असहायता पर खीज। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि ये क्या कदम उठाना चाहिए। अन्यायास उसका हाथ तलवार में मुट पर आग टिकड़ा। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रही थी। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा कीच गया। जब कोई रूह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीना से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। एक गुड़गुड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे छींकती हुई दौड़ रही थी। ततारा 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 उसके करुण चिर छेक मानव गुड़गुड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश उस दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती की चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि तरफ के द्वीप समुद्र में घिसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरी सिरा थामने चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही छींक उभर कर डूब रही थी। वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा ता ता रा पुकार रही थी। ततारा लहलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश ही नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्सों में संयोगवश जुड़ा था। बहुत हुआ ततारा कहाँ पहुँचा। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक विलग हो उठी। लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किंतु कोई सुराग न मिल पाया। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गाँवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद किसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। धन्यवाद।